सबके जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग की आयु बहुत थोड़ी है, 40 वर्ष से अभी बाकी 8 वर्ष आयु रही है। समय की वाणी है 68 की, 68 में बाबा बोला 40 साल का संगम युग है, वो किस हिसाब से बोला था? सतयुगी देवतावर्ण की शूटिंग के हिसाब से बोला था, 40 वर्ष टोटल। इसमें आदि का संक्रमण काल है वो भी जुड़ा हुआ है, बताया कि 40 वर्ष से अभी बाकी 8 वर्ष आयु रही है, आयु घटती जा रही है, कहे की संगम और हमको पहुंचना है बहुत दूर। कहां तक पहुंचना है? चालीस वर्ष के संगम युग में, देवतावर्ण की शूटिंग वाले संगम युग में बहुत समय चला गया, हमारी चाल बहुत धीमी रही और बाबा का कहना है कि हमको पहुंचना है बहुत दूर। कहां तक दूर? उल्टी सीढ़ी चढ़ रही है ना, तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने वाले जो पुरुषार्थी हैं उनको सतयुग के आदि तक पहुंचना है, आदि नारायण की स्टेज तक पहुंचना है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, माने सन 36 से लेकर 76 तक का जो टाइम था उसमें से सिर्फ 8 वर्ष बचे, 30 वर्ष तो चला गया। 68 में 32 वर्ष पूरा हो गया। ये पुरुषोत्तम संगम युग सबसे हीरे जैसा युग है। क्या सबके क्यों लगा दिया? आगे और भी जो आने वाले पीरियड्स हैं उनके मुकाबले ये देवतावर्ण की शूटिंग हो रही है, इसलिए बताया ये सबसे हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि और युगों की शूटिंग में त्रेता युग की क्षत्रियवर्ण की शूटिंग भी होनी है, यत्तर के बाद द्वापर युगी वैश्यवर्ण की भी शूटिंग होनी है, कलयुगी शूद्रवर्ण की भी शूटिंग होनी है। उसके मुकाबले अभी जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है वो सबसे हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि 8 वर्ष के बाद इसकी अवधि पूरी होगी, तो जो हीरो पांचधारी है वो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में प्रकट हो जाएगा। सबका लक्ष्य क्या है? सब ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? नरसे नारायण बनने का। 8 वर्ष रह गए हैं, इतना लंबा बढ़ना तय है और हमारी पहुंच बहुत छोड़ी हुई है। तमो प्रधान तो प्रधान स्टेज तक पहुंचना है, इसलिए बड़ा मंजिल बहुत दूर है। हीरो जैसा पार्ट धारण करने वाले हीरे जैसा पार्ट बना करके हीरे जैसे बन सकते हैं। मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, ये भूल नहीं जाना है। उस टाइम पर अगर किसी ने गफलत की तो कौन सी बड़ी बड़ी लाठी चली जाएगी, इस लाठी की तरफ इशारा दिया। नर से नारायण बनने की विश्व की बादशाही की लाठी चली जाएगी, ये भूल नहीं जाना है। बाकी समय बहुत थोड़ा है, घर पहुंचे नहीं, ऐसे क्यों कहा कि घर पहुंचने में टाइम बहुत थोड़ा है? क्या 75 के बाद घर पहुंच गए हैं? घर तो नहीं पहुंच गए, अच्छा सब नहीं पहुंच गए, कोई कोई पहुंचा, वो नहीं पहुंचा है? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी उस स्टेज तक कोई तो पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, टाइम पूरा हो गया 40 साल का। माता जी का पहुंचा? कौन सी माता जी का? माता पिता का पहुंचा? माता तो बताई 84 घंटे वाली देवी, 84 में प्रत्यक्ष होगी, 83 है तो 13 होना चाहिए, तो जब बनी है 13 83 में तो 76 में कैसे पहुंच जाएगी? कौन सी माता की बात कर रहे हैं? छोटी माता की, बड़ी माता की है? राज परिवार होता है तो एक उसमें होती है राज लक्ष्मी और एक होती है राज माता, क्या राज माता और राज लक्ष्मी। राज माता का स्टेटस बड़ा माना जाता है, लेकिन सारा राज काज संभालती कौन है? राज लक्ष्मी। तो राज लक्ष्मी छोटी हुई और राज माता बड़ी हुई। जैसे भारतवर्ष में राष्ट्रपति बड़ा माना जाता है और प्रधानमंत्री छोटा माना, लेकिन सारा कारोबार की जिम्मेवारी किसके ऊपर? प्रधानमंत्री के ऊपर है, छोटा स्टेटस में कुर्सी में, लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ी। इसी ही तरह जो 40 वर्ष का संगम युग बताया, पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें जो पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी प्रत्यक्ष होने हैं, उसमें ऊंचे से ऊंचा स्टेटस हुआ लक्ष्मी और नारायण, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वो टाइम 76 में पूरा होने के लिए इशारा दिया। तो बोला थोड़ा समय है बाकी घर पहुंचने में, तो सबके लिए ये बात नहीं बोली गई, जो आत्मा उस स्टेटस को पहुंचने वाली थी, उस स्टेटस का जिनका पुरुषार्थ पूरा होने वाला था, उन नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माओं के लिए बाबा ने ये बात बोल दी कि घर पहुंचने की स्टेज का थोड़ा सा समय बचा हुआ है। घर पहुंच के स्टेज कैसी हो जाती है? जहां घर पहुंचेंगे निराकारी धाम में, तो वहां निराकारी स्टेज होने पर संकल्प विकल्प चलेंगे या बंद होंगे? बंद होंगे। इसलिए बाबा ने बोला ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब चाहे तो एक सेकंड में निराकारी से संकल्पों को साफ कर सके। तो ऐसी स्टेज 76 तक जिनकी पहुंचे, वो स्टेटस को प्राप्त करने वाली आत्माएं संसार में साबित हो जाएंगी। इसलिए बोला बाकी समय है थोड़ा घर पहुंचने में, सतो प्रधान बन करके घर जाना है। सतो प्रधान बनेंगे तो घर की देवी का अनुभव करेंगे, नहीं तो अनुभव नहीं कर सकेंगे। और कोई सजा आदि नहीं खावे क्या? मानसिक स्टेज ऐसी बनी हुई हो कि किसी प्रकार की सजा का अनुभव न हो, पास विदानर होकर के जाना है। कहाँ जाना है? घर की स्टेज। घर माना परम धाम। परम धाम की स्टेज है निराकारी स्टेज, निसंकल्पी स्टेज, जहाँ कोई भी प्रकार का गम नहीं रहता। क्या कहते हो उसको? कौन सा बादशाह? बेगमपुर का बादशाह। बाप कोई जास्ती मेहनत नहीं देते क्या? इतना ऊंचा पुरुषार्थ और उसके लिए क्या बोला? बाप कोई जास्ती मेहनत नहीं देते हैं। निराकारी स्टेज में टिकने के लिए कोई जास्ती मेहनत नहीं है। बहुत सहज सहज पूरा हो जाता है क्या? बहुत सहज सहज पूरा भी हो सकता है। वो उन आत्माओं का पूरा हो सकता है जो श्रीमत पर चलने के लिए आमादा हो। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो रास्ता बहुत सहज पूरा हो जाता है, और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो न चलने वालों के लिए बाबा का आदेश है माया बेटी के लिए, है माया बेटी जो मेरी मत पर नहीं चलते हैं उनको तो खूब अटकाओ, तो रास्ता उनका कठिन हो जाता है। इसलिए बोला कि उनका कार्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का कार्य है, और उसमें खर्चा आदि कुछ भी नहीं। कोई मंदिर है, मस्जिद है, धर्मशाला आदि बनानी नहीं है, ये भी समझते हो। शिव बाबा तो है ही निराकार, उनको शरीर नहीं है, लेकिन जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, लक्ष्य को साधने वाले हैं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पुरुषार्थी हैं, उनको तो अपना शरीर है। शिव तो सदैव ही निराकार है, लेकिन पुरुषार्थियों को साकार की दुम्ब लगी हुई है। उस साकार दुम्ब के होते हुए भी अगर श्रीमत पर चलते हैं तो उनका पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है, और निराकारी स्टेज को पकड़ सकते हैं। जैसे बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ऐसी सदैव सदैव ही स्टेज धारण करके रहता है, ऐसे बच्चे भी वह स्टेज इन 40 वर्षों में पूरी कर सकते हैं। जो कुछ शिव बाबा के नाम पर है वह कोई अपने शांति धाम में महलमानी आदि नहीं बना लेंगे। बच्चों का पैसा बच्चों के काम में लगाते हैं। और तो सभी हैं देहधारी मनुष्य गुरु जो पैसे इकट्ठे करने वाले, वो अपने स्वार्थ के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं, लेकिन बाप तुम्हारे पैसे की एक पाई पाई भी इसलिए सेवा में लगाने वाला है। बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ, कहाँ? दिल्ली। बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ, ये डायरेक्शन दिया कब? 68 में, और 68 में दिल्ली में पहला म्यूजियम साउथ एक्सटेंशन का बना, जिसमें गीता और गोपाल निमित्त इंचार्ज बने। तो उन्होंने तो जड़ म्यूजियम बनाई दिया जड़ चित्रों का, और बाबा कौन सा म्यूजियम बनाना चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कोई ऐसा बच्चा निकले जो अपने घर में ऐसा म्यूजियम बना करके दिखाए, चैतन्य म्यूजियम, जिसमें लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माएं स्वभाव संस्कार से लोगों को देखने में आ गए, सब चारों ओर से आ गए उनका दर्शन करने के लिए, ऐसा म्यूजियम बनाने, उस म्यूजियम को बनाने के लिए कोई खर्चे आदि की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास एक कमरा है तो उस कमरे में ही खाना बना सकते हैं, रात को सो सकते हैं, सवेरे उठकर झाड़ू पोछा लगाकर उसमें क्लास लगा सकते हैं। तो और सभी देहधारी धर्मगुरु तुम्हारे पैसे इकट्ठे करके अपने काम में लगाए देंगे, लेकिन ये बाप ऐसा है जो तुम्हें डायरेक्शन देता है कि तुम इस पैसे से क्या करो, दिल्ली में म्यूजियम बनाओ। बोला तो 68 में था, कब बोला था 68 में, और दिल्ली में वो चैतन्य म्यूजियम अब तक भी तैयार नहीं हुआ, जो जरा हुआ था तैयार वो भी सेंटर ट्रांसफर होने की वजह से साउथ एक्सटेंशन से हट करके दूर दूसरी जगह चला गया, वो म्यूजियम का रूप नहीं रहा, अब वो म्यूजियम का रूप न रह करके साधारण सेंटर हो गया। तो बाबा कहते हैं हम कहाँ पैसा इकट्ठा करेंगे, शिव बाबा के नाम पर तुम बच्चे बनाते रहते हैं, वो देहधारी धूम धर्मगुरु लोग भी शिव बाबा के नाम पर पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा को हाथ में देते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो वहां होता ही नहीं, कहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा होता है, शिव बाबा तो होता नहीं। अच्छा भक्ति मार्ग की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की संघ में भी दुनिया में वो बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में इकट्ठा हो रहा है, क्या शिव बाबा के हाथ में पहुंचता है, नहीं, शिव बाबा है वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ तो बोला है कि जैसे दुनिया वाले पैसा देते हैं तो ऐसे उनके नाम पर बनाते हो, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल का उनको क्षण भंगुर सुख मिल जाता है, क्यों, क्योंकि देहधारी धर्मगुरुओं के वो बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में इकट्ठा हो रहा है, क्या शिव बाबा के हाथ में पहुंचता है, नहीं, शिव बाबा है वहां मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ तो बोला है कि जैसे दुनिया वाले पैसा देते हैं तो ऐसे उनके नाम पर बनाते हो, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल का उनको क्षण भंगुर सुख मिल जाता है, क्यों, क्योंकि देहधारी धर्मगुरुओं के थ्रू उन्होंने एक जन्म के लिए प्रारब्ध बनाई, और बाप आकर कितने जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं, इक्कीस जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं तुम्हारे पाई पैसे के आधार पर जो तुम डायरेक्ट देते हो शिव बाबा के हाथ में, 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है, 21 जन्मों का जो जैसा पुरुषार्थ करने के लिए प्रयत्न करता है यहाँ संघ युग में, उसी आधार पर 63 जन्मों का भी उनका हिसाब किताब बनने की छूटी हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली है और बाप है सदा काल का अविनाशी सुख देने वाले, तो 21 जन्मों का सुख तो बाप की कीमत पर चलने से होता है, बाप को डायरेक्ट देने से होता है, और 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर नूद हो जाता है, जितने यहाँ जितना तीखा पुरुषार्थ किया वो वहाँ भी 63 जन्मों में तीखा पुरुषार्थ करने के लिए अभ्यास ही बन जाता, वो अभ्यास उसका 63 जन्म में वहाँ काम आता है, तो मिलेगा यहाँ तो शिव बाबा डायरेक्ट है, वो भक्ति मार्ग में शिव बाबा उनको डायरेक्ट नहीं मिलता। अच्छा भक्ति मार्ग की बात छोड़ दो, बेसिक नॉलेज की बात ले लो, उनको डायरेक्ट शिव बाबा मिला हुआ है। कोई में देवी की आत्मा प्रवेश करती है कहते हैं, कोई में देवता की आत्मा प्रवेश करती है, तो क्या वास्तव में देवी देवताओं की आत्मा इस दुनिया में है मौजूद? नहीं। कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं और उनको समझ लेते हैं कि इनमें देवी आई इनमें देवता आया। ऐसे ही बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण है तथा दुनिया के, वो ये समझ लेते हैं कि गुलजार दादी में शिव बाबा आया, लेकिन शिव बाबा तो आता ही नहीं, ये तो बात साबित ही नहीं होती। क्योंकि शिव बाबा जब आता है तो शिव बाबा के आने से चेहरा मोहरा कुछ भी बदलता बदलता नहीं। शिव बाबा बुलाने पर कभी आता नहीं। शिव बाबा जब आता है तो साधारण रूप में आता है, किसी को पता भी नहीं चलता कब आया और कब चला गया। तो ये साबित हो गया, ब्राह्मण जैसे दुनिया वाले मुगालते में रहते हैं, सच्चाई को नहीं जानते, झूठे गुरुओं को शिव बाबा शिवोहन समझ करके उनको अपना धन संपत्ति देते रहते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमे की दुनिया में जो ब्राह्मण हैं वो मुगालते में, वो अपना पैसा देहधारी धर्मगुरु ब्राह्मणों को देते रहते हैं, उस पैसे से कोई संसार या दुनिया नरक से स्वर्ग बनने वाली नहीं, सदा काल का सुख देने वाली दुनिया नहीं बन सकती। अल्पकाल के लिए मेहरबानियाँ अटारियाँ बड़े बड़े ऊंचे शांति धाम सुख धाम आदि बना दे, म्यूजियम आदि बना दे, जरा म्यूजियम वो दूसरी बात है, लेकिन चैतन्य म्यूजियम नहीं बनाएगी। तो वो तो ईश्वर है, सत्य का दान पुण्य करते हैं, इसका फल उनको क्षण भंगुर के लिए अगले जन्म में मिल जाता है। तो अल्पकाल का उनको सुख मिलेगा, यहाँ तो शिव बाबा डायरेक्ट है, इसलिए तो उनको डायरेक्ट प्राप्ति कराते, इसी जन्म की प्राप्ति कराते। ऐसे नहीं कि ये क्षण इस जन्म में हम दान पुण्य करते रहे अगले जन्म में जाकर के हमको मिलेगा, नहीं, बाबा डायरेक्ट ये हमको आफत देते हैं कि तुम यहाँ पुरुषार्थ करो और यहाँ का इसी जन्म में अगले जन्म की बात नहीं यही प्राप्ति कर सकते हो, तन भी स्वस्थ तुम्हें मिलेगा, धन भी यथाकूट मिलेगा और मन भी तुम्हारे के लिए सदा तुम्हारा सदा तालिम बन जाएगा, ऐसी बुद्धि बन जाएगी जिसमें विकारों का नाम निशान नहीं होगा। क्या वो तो देहधारी गुरु लोग भगवान का परिचय देते हैं और यहाँ बाप खुद आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तो भगवान जहाँ खुद आकर के अपना परिचय देते हैं तो असली पहचान किसको मिलेगी? जो गुरुओं के थ्रू पहचान मिलती है भगवान की वो असली पहचान है, या भगवान खुद आकर के अपनी पहचान दे वो मिलेगी? भगवान जो खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं वो है असली पहचान। ये नई बात हो गई दुनिया में, इस नई बात को कोई जान न सके सिवाय तुम बच्चों की। अभी जो याद की यात्रा है जो तुम बच्चों को बात सिखलाते हैं वो तो कल पहले भी समझाई थी, तुम्हारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, तुम कल्प डायरेक्ट बाप से आकर के परिचय लेते हो। ये पुरुषोत्तम संग में उनको जरूर होना चाहिए, कौन सा पुरुषों में उत्तम आत्मा जहाँ संसार में प्रत्यक्ष होती हो, पुरुष माने आत्मा, आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र के बीच में आती हैं, उस जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो उत्तम से उत्तम हीरो पायलट बनाने वाली आत्मा है वो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। तो ये पुरुषोत्तम संग में कनिष्ठ माने नीचते, जो नीचते नीचे काम करने वाले हैं वो ऊंचे से ऊंचे वरिष्ठ बात बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं। ये कहीं कोई भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। और जो भी धर्म स्थापक है वो तो सभी शरीरधारी, और यह बात शरीर को धारण करने के बावजूद भी शरीर में धारण अपनी आत्मा को इस रूप में अनुभव नहीं करता कि वो देहभान में आ जाए। देहभान में आने वाले मनुष्य होते हैं जो गुरु कहलाते हैं, देहभान में आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे दुनिया नीचे गिरती है। परमात्मा बाप ऐसी आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं आत्मिक स्टेज में रहकर जिससे सारी दुनिया ऊंची उठती है। बाकी अशरीरी होता तो कृष्ण का नाम डाल देते, अगर ये भी अशरीरी नहीं होता तो कृष्ण का नाम नहीं डालते। अभी कृष्ण कैसे नहीं दुनिया स्थापन करेंगे, क्योंकि कृष्ण को तो अपना शरीर होता है। कृष्ण उतरती कला वाला होगा या चलती कला वाला होगा? कृष्ण में जन्म लेगा बच्चे के रूप में, बड़ा होकर प्रिंस से फिर नारायण बनेगा। लेकिन नारायण तो बनेगा, नारायण बनने के बाद फिर उसकी उतरती कला शुरू होगी या चलती कला शुरू होगी? उतरती कला शुरू होगी। तो जिसकी स्वयं ही उतरती कला हो वो दूसरों को चलती कला में कैसे ले जाएगा? ये दुनिया उतरती कला वाली, इस उतरती कला वाली दुनिया को ऐसी नई दुनिया बनाना जो पूरी सोना कला संपूर्ण बन जाती है, वह एक निराकारी बाप का ही काम है। कृष्ण नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते, वो तो उतरती कला वाली दुनिया की स्थापना करने के कारण फिर भी दुनिया नरक बन जाएगी। स्वर्ग से आखिरी एक दिन नरक बननी ही है, लेकिन शिव बाबा की ये सिद्ध है कि वो जब आते हैं तो ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जो संपूर्ण सोलह कला संपूर्ण बन जाती है। जब खुद ही नई दुनिया का स्थापन करने वाला नहीं है, खुद ही नई दुनिया में प्रिंस बनेगा तो नई दुनिया कैसे बनेगी? तो बाप बताते हैं कि मैं स्थापना करता हूँ। ये कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म है जिसमें ये अच्छे कर्म करके फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या सन 68 तक जितने भी दादा लेखराज वाली सोल कृष्ण की सोल ने अच्छे से अच्छे कर्म कर लिए, उन कर्मों के आधार पर वो क्या बनती है? सतयुग में जाकर प्रिंस बनती है। नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनती, जितने अच्छे कर्म फिर भी नहीं हुए, क्योंकि बाप की जो पूरी पढ़ाई है वो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ के पहले ही शरीर छोड़ दिया। बाप तुमको भी अच्छे कर्म सिखलाते, कृष्ण की आत्मा ने भी अच्छे कर्म किए, लेकिन उतने अच्छे कर्म नहीं किए जितने तुम कर सकते हो। तुम कहाँ तक अच्छे कर्म कर सकते हो? तुम्हारी कर्मों की स्टेज इतने अच्छे कर्म करने की है कि तुम इसी जन्म में इसी शरीर से नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बन सकते हो। कृष्ण अथवा राधा की सोली है ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये तो है ही विकारी। नई दुनिया है निर्विकारी, ये पुरानी दुनिया है विकारी। बाप कहते हैं अब थोड़े दिन बाकी है इस बात के, नई दुनिया आने के थोड़े दिन बाकी हैं। कितने दिन बाकी बताए? 76 में अठसठी बुरी है ना, तो 76 में नई दुनिया आ जाएगी। तो आ गई नई दुनिया? नहीं आई। लेकिन बुद्धि जिसकी पलट गई, तो बाबा ने ये जो हमें पाठ पढ़ाया है आप हुए, अगर हमने अपने को मान लिया, अपने देह अहंकार को मान लिया, तो हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खराब हो। तो ऐसी स्टेज जिन बच्चों ने धारण की उनको ये अनुभव हो सकता है कि हम नई दुनिया के नए संगठन में हैं, हम पुराने संगठन में अब नहीं। मतलब वो खुशी अपने मन के अंदर धारण करने की बात है, अपने मन को अपनी बुद्धि रूपी आत्मा को ऐसा सेट कर ले कि हम दुख न भोगे, हम सुख भोगे, हम दुख में अनुभव न करें, हम सदैव अपने को खुशी में अनुभव करें। हमको बात मिला है, जो पाना था तो हमने पा लिया। तो आप बच्चे अभी बाकी थोड़े दिन है, वो कितना समय बीत गया, तीन चौथाई इसका जो बाबा बता रहे हैं देवतावन की दुनिया के लिए पुरुषार्थ करने का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय, उसमें तीन चौथाई संघर्ष तक बीत गया, अब सिर्फ एक चौथाई हिस्सा बचा। कितना समय बीत गया, अभी तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है, सात आठ वर्ष का जो टाइम बचा है उसमें पुरुषार्थ बहुत करना है, और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ये बाबा ने किस हिसाब से बताया, एडवांस पार्टी के बच्चों के हिसाब से बताया या अपने और अपने साथियों के कुछ के हिसाब से बताया है? नहीं, वो सब है जो ऐसी आत्माएं बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली थी, जो कृष्ण जैसी पुरुषार्थी थी, उन आत्माओं के हिसाब से बताया कि तीन चौथाई समय उनका खत्म हो गया, एक चौथाई समय बचा है और पुरुषार्थ बहुत लंबा समय है। आठ वर्ष में नरसिंह नारायण बनने जैसा पुरुषार्थ करना है, और करिए किया अभी बहुत कुछ कम है, तो किया कम है करना ज्यादा है, उस हिसाब से बोला। अभी तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ कर, ये बोला किसने, सुप्रीम सोल ने बोला या ब्रह्मा की सोल ने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला कि अभी बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है, और ये थोड़े दिन के बाद कृष्ण की सोल ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो नर से नारायण बनने की स्टेज तक वो आत्मा नहीं पहुंच रही। बच्चे जानते हैं समय कैसे जाता रहता है, इतने वर्ष इतने मास इतने मिनट इतने सेकंड इतने घंटे बीत गए, बाकी है आठ वर्ष। लाखों वर्ष का तो कोई हिसाब किताब निकाल नहीं सकता, लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य घोर अंधेरे में पड़े हुए। बात कहते हैं बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय बीतता जा रहा, कलयुग तो गया कि गया, मनुष्यों की बुद्धि में कलयुग अजुन 40,000 वर्ष के लिए पड़ा हुआ। मनुष्य क्या समझते थे कि अभी 40,000 वर्ष कलयुग चलेगा, वो अपनी भिखारी चाल ही चलते रहते हैं। कौन जो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, वो भिखारी चाल चलते हैं, चाहे बाहर की दुनिया के मनुष्य हो और चाहे ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया के मनुष्य, उनको विश्वास ही नहीं है कि भगवान आया हुआ है, भगवान साकार में आया हुआ है, उनको ये विश्वास नहीं है, इसलिए उनकी चाल भिखारी की भिखारी बनी रहेगी या भिखारी की निर्भिखारी बन पाएगी, वो तो भिखारी की भिखारी रहेंगे। अभी तुमको भिखारी से निर्भिखारी बकित से पावन जरूर बनना, जरूर बनना है, माना तुम अनिश्चय बुद्धि बन करके रह जाओ, और वो अनिश्चय बुद्धि होने के कारण बिना चिंती की स्टेज को पा जाते हैं। अभी इस पतित दुनिया का विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या था, इस पतित दुनिया का विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है। आठ वर्ष रह गए तो पतित दुनिया का, बाहर की दुनिया का तो छोड़ो, ब्राह्मणों की संगत की दुनिया का विनाश हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर आप हुए तो मर गई दुनिया, ये तो आप काम से नहीं है, अगर नहीं मरे हैं तो विनाश नहीं हुआ, अगर खुद को मार दिया है, खुद ही को मार दिया है تو وہ دنیا سے ہمیں کچھ لینا دینا ہے نہیں. جب لینا ہی لینا نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ پرانی دنیا خلاص ہو گئی. پرانی دنیا کے براہمنوں کا سنگٹھن, وہ راون کمبھکرن میگھناد جیسے براہمنوں کا سنگٹھن ہمارے لیے ہوا ہوا نہ ہوا, ایک بات. تو ابھی اس پتت دنیا کا بنا سامنے کھڑا ہے, ابھی سبھی سے بدھیوں بھرا دو. کیا کیا کرو؟ ابھی ان سبھی سے بدھیوں کو ہٹاتے جاؤ. جن سے جو بھی پرانی دنیا کے ان آنکھوں سے دکھائی پڑتے ہیں ان سے بدھیوں ہٹاتے جاؤ. کن میں لگاتے جاؤ؟ جو نئی دنیا سامنے کھڑی ہوئی ہے, جو نئی دنیا کا سنگٹھن تمہیں سامنے دکھائی پڑ رہا ہے ان میں اپنی بدھی لگاتے. مانے باپ کے سمبند اور باپ کے سمپرک کے آدھار پر اپنا سمبند اور سمپرک قائم رکھنا. جن آتماؤں سے باپ کا سمبند نہیں, جن آتماؤں سے باپ کا کوئی سمپرک نہیں, ان آتماؤں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں, ہمارے لیے وہ مر گئے. تو ابھی سبھی سے بدھیوں کو ہٹاتے جاؤ, ان سبھی کو چھوڑ اپنے گھر جانا. کیا ان سبھی کو بدھیوں سے چھوڑ دو اور اپنے گھر باپ کے گھر میں واپس جاؤ. باپ کو یاد کرنا. کیا کہا؟ بدھیوں کو باپ کے گھر میں لے جاؤ, باپ کو یاد کرو. پھر کہتے ہیں نئی دنیا کو یاد کرو. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک کو یاد کریں یا تین تین کو یاد کریں؟ گھر کو یاد کریں کہ سر کو یاد کریں کہ باپ کو یاد کریں, کس کو یاد کریں؟ ارے جو باپ ہے وہی ہمارے لیے سرگ ہے, وہی ہمیں سکھ دینے والا ہے. اس کی یاد میں رہیں گے تو سکھی ہی سکھی رہیں گے. باپ کے علاوہ اور دوسروں کو یاد کریں گے تو سکھی سکھ پیدا ہوتا ہے, سب سکھ دائی. تو جو باپ ہے وہی ہمارے لیے سورگ ہے, جو سورگ ہے جو باپ ہے وہی ہمارا گھر ہے. مانے باپ جس تن میں پرویش کرتا ہے وہ تن جو ہے جس استھان پر بھی اپنا کاری کر رہا ہے, جیسے کہتے ہیں مدھوبن, مدھوبن کس کا گھر ہے؟ مدھوسودن کا گھر. تو جہاں مدھوسودن ہے وہاں ہمارا گھر, ہماری بدھی وہاں رہنی چاہیے. تو ایک ہی بات ہے, ایسے نہیں سمجھنا, الگ الگ باتیں. چاہے گھر کا ہو, چاہے باپ کا ہو, چاہے سورگ کا ہو, اسے پتت دنیا کا بنا تو سامنے کھڑا ہوا ہے. باپ کو یاد کرنا ہے اور پنچ بننا ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے اس لیے غفلت چھوڑ دو. غفلت کرنے والے ایشوریہ سرگ سے نہیں کر سکتے. کیا تھا اگر بولا کہ امرت میلا سفل کرو اور امرت ویلا سفل نہیں کیا, غفلت کرتے رہے تھوڑا اور سو لیں. تو غفلت کرنے والے بتا دیا کہ ایشوری سیوا نہیں کر سکتے. جو غفلت کریں گے وہ آخری سیوا ہی کر دیں گے. اپنی آتما کی سیوا نہیں کر سکے تو دوسروں کی سیوا کیسے کر سکتے؟ اس لیے بولا ایشوری سروس نہیں کر سکتے. جب خود اچھے بنے تو اوروں کو اچھا بنا دی. خود ہی کمبھکرن نیند میں سوتے رہتے. جو اچھے سے اچھا ٹائم بتایا ہے پرشارتھ کا, اس ٹائم کو اب تک بھی سفل نہیں کر پا رہے. بابا تو بولتے ہیں جنہوں نے اپنا امرت ویلا تو سدھار لیا, انہوں نے سمجھو سب کچھ سدھار لیا. امرت ویلا سدھرا تو سب کچھ سدھر جائے گا. اس ایک بات میں ہی اگر وجے پالی تو ساری وجے ہو جائے گی. تو جو اچھا بنے گی وہ اچھا بنا لیں گے, برے تو ضرور برا ہی بنا لیں گے. کوئی بھی چیز کی کام بھول آج نہیں ہونی چاہیے. پر وہ کیا بنتی ہے؟ امرت ویلے اٹھتے ہی بدھی میں چیچی باتیں اگر گھس جائیں تو ایسے چیچی باتیں بدھی میں لانے والے وہ چیچی دنیا بنائیں گے یا ایک دنیا بنائیں گے؟ اب کی دنیا تو بنا نہیں سکتے, پھر چھ دنیا میں ہی جا کر کے جنم لیں گے. نرک میں ہی دھوتے دھوتے کھاتے رہیں گے. جیسے اس گیتا میں لکھا ہے موڑا جنمنی جنمنی, ایسی موڑ ہاتھ میں جن کی بدھی میں بات بیٹھتی نہیں वो जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में जाकर के जन्म लेती रहेगी। वो स्वर्ग का अनुभव यहाँ भी नहीं कर सकेंगे और आगे आने वाले जन्म में भी स्वर्ग का अनुभव तो कोई भी चीज की काम अथवा भूल आगे नहीं होनी चाहिए, इसलिए कचहरी भी होती रहती है। तुम अभी ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई भूल आगे नहीं होगी, फिर वहां कचहरी भी करने की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि रावण राजी ही नहीं होगा। भूल कराता है रावण, भूल कौन कराता है? रावण माना एक मुख से मत देने वाला भूत नहीं, भूल नहीं कराता है। जो दस सिर वाला है, दस मतें देने वाला है, वो भूल कराता है। आज तो है ही पंचायती राज, एक पंच कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, सरपंच कुछ और ही बात बता देगा, एक गुरु एक बात बताएगा, दूसरी गुरु दूसरा रास्ता बताएगा, तीसरा गुरु तीसरा रास्ता बताएगा। इसलिए बाप कहते हैं इस रावण की मत पर अब मत करो, ये गफलत छोड़ दो, ये रावण माया भूल कराती है। याद में न रहते हैं तो माया भूल कराएगी। कितनी भूले मनुष्यों से होती रहती है। देवताओं के आगे भी जाकर कहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। क्या देवताओं के आगे जाकर क्या कहते हैं भक्त लोग कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तुम्हें ही हमारे ऊपर दया दया करो। तो ये भक्ति मार्ग में ही कहते हैं। या भक्ति मार्ग की जब शूटिंग होती है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, तब भी ऐसे कहते हैं, तब भी ऐसे कहते हैं। जिनके जिनके नंबर खुलते जावेंगे, जिनके जिनके पार्ट प्रत्यक्ष होते जावेंगे कि ये अमुक नंबर का मणका है, ये अमुक नंबर का देवता बनने वाला है, उनके सामने जाकर अपनी भूल वर्णन करते रहे। सारा पोता मेल उनके सामने बोलते रहेंगे, पोता मेल बोलते रहेंगे, भूलें वर्णन करते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे कि तुम ऐसे श्रेष्ठ हो और हम ऐसे भ्रष्ट हैं। ये शूटिंग अभी हो रही है, लेकिन बात कहते हैं कि आप भक्ति मार्ग को खराब कर देना, भक्ति मार्ग की शूटिंग नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में विशेष अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते हैं करते नहीं, और ज्ञान मार्ग में जो हम कहते हैं वो करके दिखाएं तो है ज्ञान मार्ग। नहीं तो अगर ऐसे ही भक्ति मार्ग में चलते रहेंगे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या अगर इसी तरह भक्ति मार्ग में चलते रहे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो भी एडवांस पार्टी में हो, चाहे बेसिक ज्ञान में हो, चाहे दुनिया वाले भक्त हो, जो शरीर छोड़ रहे हैं वो किस लिए शरीर छोड़ रहे हैं? क्योंकि रावण की मत पर चल रहे हैं। अगर तुम बच्चे, अगर हम बच्चे रावण की मत को त्याग करके एक पाप की मत पर चले तो हमसे कोई पाप कर्म होने वाला नहीं है। हमें इतना इतनी पावर भर जाएगी, इतना हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाएगा कि हम इसी जगह में इसी शरीर से इन्हीं आंखों से स्वर्ग को देखने काबिल बन जाएंगे। तो बोला माया भूल कराती है, देवताओं के आगे जाकर कहते रहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अथा पाप हमने किए हैं। उनको ये पता नहीं रहता कि हमने कितने जन्म लिए, तो कहते हैं जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। जहाँ भी जानेंगे, गंगा पर जानेंगे तो भी कहेंगे हमारे पाप काट देना, मैं जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। देवताओं के मंदिर में जानेंगे, शिव के मंदिर में जानेंगे तो यह जरूर कहेंगे कि मैं महापापी हूँ, मेरे पाप काट देना। उसको तो बाप ने बताया है कि तुमने कितने जन्म लिए, कोई ने 63 जन्म लिए, कोई ने 60 लिए, कोई ने 20 लिए, कोई ने और कम लिए। अठारह नौ 68 की वाणी का दूसरा बेट, कोई ने 10 जन्म भी लिए हो, कोई एक जन्म भी लेते हो, तो पाप तो जरूर करते हैं, चाहे कम जन्म ले और चाहे पूरे 84 जन्म, पाप तो जरूर करते हैं। रावण के राज्य में पाप जरूर है, जन्म से ही पाप होता है। सन्यासों का भी भ्रष्टाचार से जन्म होता है, ऐसे नहीं के सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, विकार छोड़ देते हैं, तो उनसे पाप नहीं होता है क्या? पाप उनसे क्यों होता है? सन्यासी दस इंद्रियों से पैदा होते हैं। शेष इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक आंख कान, इनसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती। देवताओं की शेष इंद्रियों से उत्पत्ति होती है, पैदाइश होती है। और सन्यासी फिर भी मूत से पैदा होते हैं, जैसे हम सब मूत से पैदा हुए इन शरीरों के द्वारा, इन शरीरों के थ्रू, ऐसे ही सन्यासी भी दस इंद्रियों से पैदा होते हैं। दस इंद्रियों से जो पैदा होगा, पैदाइश ही जिसकी दस से होगी, वो फिर किसी हालत में देवता नहीं बन सकता। तो ये उनकी बुद्धि में नहीं है, वो अपने को बहुत ऊंचे समझते हैं। पाप कहते हैं सन्यासियों का भ्रष्टाचार से जन्म होता है। भ्रष्टाचारी और शेष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये तो आज की गवर्नमेंट भी नहीं समझती। गवर्नमेंट क्या कहती है, जो रिश्वत लेते हैं वो है भ्रष्टाचारी। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े हैं वो सन्यासी को बहुत मान देते हैं, समझते हैं सन्यासी पवित्र हैं, वो शेष्टाचारी होंगे। बाप समझाते हैं, उन्होंने तो सिर्फ घर बार छोड़ा है, बाकी मन बुद्धि से विकारों को नहीं छोड़ा है। उनके मन के अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संकल्प करते रहते हैं, मौका लगे तो प्रैक्टिकल कर्म में भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके साथ रहता है तदा उन्हें उनका अंतर देखने में नहीं आएगा। समझते हैं, बाप समझाते हैं, उन्होंने सिर्फ घरबार छोड़ा है, स्त्री को विधवा और बच्चों को निर्धन का बना करके चले गए, तो ये पाप कर्म हुआ या पुण्य कर्म हुआ? ये तो और ही पाप कर्म हो गया। वो धर्म ही ऐसा है, कैसा धर्म है कि कोई को भी शरण में लेकर उन्हें शरणागत बचन की ध्यान रखने वाले नहीं है, वो धर्म ऐसा है। वो भी अगर न होते तो ये भारत और भी गंदा बन जाता। सन्यासियों से सिर्फ फायदा क्या हुआ, उन्होंने जो विकारों का त्याग किया, उनके विकार त्याग करने से संसार का वायुमंडल थोड़ा सुधरा, संसार का नहीं भारत का, भारत का वायुमंडल थोड़ा सुधरा और भारत बहुत पतित होने से थोड़े समय के लिए पतित, फिर भी पवित्र तो रहते हैं ना, भारत है ही पवित्रता पर थमा हुआ है। क्या भारत में जितनी पवित्रता के प्रति विशेष आस्था है, उतना कोई दूसरे देश में आस्था नहीं है। भारत में और भारत के धर्मों में जितना पवित्रता के प्रति विशेष स्नेह है, विशेष रिगार्ड है, उतना और दूसरे धर्मों में और देशों में नहीं है। ज्यादा संन्यास के प्रति, विकारों के प्रति संन्यास कहाँ करते हैं? भारत में करते हैं, दूसरे देशों में संन्यास ऐसे नहीं करते, और करते भी हैं तो इतने सन्यासी नहीं बन पाते हैं जो घर बार छोड़ करके पवित्रता को उस रूप में धारण कर सके, जैसे भारत के सन्यासी धारण कर लेते हैं। विदेशों में कन्या माताओं की पवित्रता के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं देते, कन्याओं की सुरक्षा भी नहीं करते, और भारत में कोई भी घर में चले जाओ कन्या माताओं की विशेष सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सबके अंदर ये बुद्धि में रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा घर बिगड़ जाए, क्योंकि ये मान्यता है यहाँ कि घर की स्त्री अगर बिगड़ जाए तो सारा घर नरक बन सकता है, घर की स्त्री अगर सुधरी हुई बनी रहेगी तो सारा घर स्वर्ग बन सकता है। तो बोला भारत जैसा पवित्र खंड और कोई खंड नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को भी कहाँ आना पड़ता है, भारत में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पवित्रता की यहाँ विशेष मान्यता है, आधा कल्प है पवित्र दुनिया में, कहाँ आज भारतवर्ष, आधा कल्प होती है पवित्र दुनिया और आधा कल्प है अपवित्र। भारत पवित्र भी बनता है, भारत अपवित्र भी बनता है, उसमें भी शत्रु को पूरा पवित्र कहते हैं, पूरा पवित्र माने वहाँ सोलह कला संपूर्ण पवित्रता होती है और त्रेता में दो कलाएं कम हो जाती है। सत्युग को कहेंगे फूलों का बगीचा, सत्युग से कहते त्रेता द्वापर और कलयुग में आते हो वो तुम जानते हो, कितने वर्ष कितने मिनट पास हुए, बच्चों ने हिसाब भी निकाला है, बाकी संगम का हिसाब रहा हुआ है, हिसाब कहेंगे करेंगे कि चार हिस्सा पूरा हुआ और एक बच्चे चार हिस्सा संगम युग बच गए। किस हिसाब से बताया? ब्राह्मण तो देवता पर बनने वाली आत्माओं के हिसाब से बताया, सभी वर्णों के हिसाब से नहीं बताया। 40 वर्ष में से 8 वर्ष बचे, वो भी समय पास होता जा रहा है, बच्चों की पोशाक में भी कितना रात दिन का फर्क रहता है, बस अभी भी नंबर वार होते हैं, क्या था बच्चों की पोशाक में कितना फर्क बताया, रात और दिन का फर्क था समर्थक। कैसे? कोई देवता वर्ण में जाने वाले बच्चे थे, कोई क्षत्रिय वर्ण में जाने वाले बच्चे थे, कोई वैश्य वर्ण में जाने वाले बच्चे थे, कोई बौद्ध धर्म में जाने वाले बच्चे थे, कोई नास्तिक वर्ण में जाने वाले बच्चे थे, ऐसे तो सारे ब्राह्मणों की जनसंग में दुनिया में ना, तो जो भी बच्चे थे उनके पुरुषार्थ में रात दिन का फर्क था, मत में भी नंबर वार हो जाते। तुम हो इस संगम युग के ब्राह्मण, कौन से संगम युग के ब्राह्मण, इस संगम युग के, कौन सा संगम की तरह विचार किया, जो पुरुषोत्तम संगम युग में 76 में पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा प्रत्यक्ष होनी, तो इसलिए बोला तुम हो संगम युग ब्राह्मण इस संगम युग, तुम्हारे लिए भी ऐसे सिर्फ अपने जिंदगी बिताते हैं, तो जब बिल्कुल कुछ शर्मती नहीं करते हैं तो प्राप्ति उनको क्या होगी, वो कौन सी स्टेज में आएंगे, प्रजा वर्ग में भी कहीं दास दासी और चांडाल न बन पड़े, कोई तो बहुत अच्छी सर्व कर रहे हैं, तन मन धन से सर्विस कर रहे हैं, क्या इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं कि अपना तन भी लगाते हैं और मन भी लगाते हैं और धन भी लगाते हैं, समय और संपर्क भी पूरा लगाते हैं, तो जो ऐसी सर्विस में लगे हुए हैं उनका पद जरूर ऊंचा बने, तन मन से सर्विस में लगे हुए हैं, आत्मा का मन भी लगा हुआ है ना, आत्मा में सबसे पावरफुल शक्ति कौन सी है, मन, मन बुद्धि ऐसी पावरफुल चीज है कि अगर पूरी तरीके से सेटिंग कर ली जाए तो मन से ही सारा काम किया जा सकता है, सारी सेवा मन से हो सकती है, इसके लिए क्या बोला हुआ, इससे बोला हुआ है मन का सेवा हुआ गायन है योग बल से विश्व की बात सही ले सकते, तो योग बल से तो मन की ही तो बात है, तन से सेवा करने को योग बल कहा जाता है, हाँ ये बताया कि ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि तन सेवा में लगा रहे और तन से सेवा करते हुए भी मन बाबा की याद, तो अभी बच्चों का काम है बाप को फॉलो करना, जैसे बाप रात दिन सर्विस में लगा हुआ है तो बच्चे भी रात दिन सर्विस में लगे रहना है, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, कहाँ इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सद भी सदाकार नहीं रहेगा, ये सद सड़ता जाएगा और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी, धन भी नहीं रहेगा, धन का क्या असर बताया, किसकी दबी गई धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटता और किसकी आग लगा, ये चार असर धन के होंगे, किसी का धन बचने वाला नहीं है, तो तन भी कोई गुमान करने की चीज नहीं है, और जो धन है वो भी कोई अहंकार करने की चीज नहीं है, एक मन ही ऐसी चीज है आपके पास, क्या कि मन को अगर हम सेट करना जैसे बाबा ने बताया है सेट करना सीख ले, तो मन से हम बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं। एक जन्म की नहीं, 84 जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सारे विश्व की आत्माओं के लिए हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त बन सकते हैं। तब अगर अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को, समय और संपर्क को अभी से लगाना शुरू कर दें, ये आमादा हो जाए, ये पक्की प्रतिज्ञा कर ले कि अब हम अपने अलवेलेपन में नहीं रहेंगे। तो अभी बच्चों को बात को फॉलो करना, समझना है कि यहाँ तो उस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए गरीब अपना जमा करते हैं। जिनके पास बहुत धन दौलत है वो तो उस मगरूरी में रहते हैं। शिव बाबा कि गरीब ही आकर कहते हैं कि बाबा, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको अपने परिवार का सदस्य बनाते हैं।